अध्याय दो भाषा। भाषा के विविध अर्थ। साधारणतया भाषा शब्द का प्रयोग विचारों अथवा भावों की अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त उन सभी साधनों के लिए होता है जो चेतन प्राणियों एवं जड़ पदार्थों में देखे एवं सुने जाते हैं। जैसे मानव परस्पर विचार विनिमय के लिए जिन ध्वनि संकेतों को अपनाता है वे सभी भाषा कहलाते हैं। पशु और पक्षी जिस ध्वनि का प्रयोग करके अपने विविध भावों को व्यक्त करते हैं उसे पशुओं एवं पक्षियों की भाषा कहा जाता है। सैनिक या बालचर झंडियों के माध्यम से जो बातें करते हैं उसे सांकेतिक भाषा कहा जाता है। गूंगे या बहरे अपने हाथों के संकेतों या आँखों अथवा ओठों के इशारों से जो भाव व्यक्त किया करते हैं उसे गूंगे की भाषा अथवा इंगित भाषा कहते हैं, और किसी खंडहर या राजभवन के भग्नावशेषों को देखते ही वहाँ का प्रत्येक पत्थर या रोड़ा उस स्थान के प्राचीन वैभव की जो कहानी कहता है उसे साहित्यकार खंडहर की भाषा कहा करते हैं। इसी तरह समुद्र के गर्जन तर्जन को समुद्र की भाषा, बादलों की गड़गड़ाहट को मेघों की भाषा, बिजली की तड़तड़ाहट को बिजली की भाषा, नदी की कलकल छल छल को नदी की भाषा, आंधी की भयंकर साय साय को आंधी की भाषा, वर्षा काल में रात्रि के समय झिंगुरों एवं झिल्लियों की झंकार को रात्रि की भाषा आदि कहा जाता है। यह भाषा शब्द बड़े व्यापक रूप में व्यवहृत होता है। सामान्यतः मनुष्य मात्र की प्रत्येक सभ्य एवं असभ्य बोली को भाषा कहा जाता है। किसी बड़ी जाति या बड़े देश की भाषा को भी भाषा ही कहा जाता है। प्रांतीय बोलियाँ भी भाषा ही कहलाती हैं, और किसी राष्ट्र या देश की शुद्ध परिनिष्ठित भाषा को भी भाषा ही कहा जाता है। इतना ही नहीं, भिन्न भिन्न व्यक्तियों की अपनी अपनी विशेषताओं से युक्त निजी बोलियों को भी भाषा ही कहा जाता है। जैसे राम की भाषा, गांधी जी की भाषा, नेहरू जी की भाषा आदि। एक ही स्थान पर रहने वाले विभिन्न धर्मावलंबियों की बोलचाल में व्यवहृत बोली को भी भाषा कहा जाता है। जैसे हिंदुओं की भाषा, जैनियों की भाषा, सिखों की भाषा, मुसलमानों की भाषा, ईसाइयों की भाषा आदि। किसी नगर या ग्राम में रहने वाली विभिन्न जातियों की बोलियों को भी भाषा कहा जाता है। जैसे गुजरों की भाषा, ठाकुरों की भाषा, वैश्यों की भाषा, ब्राह्मणों की भाषा, चौबों की भाषा, चमारों की भाषा, कंजरों की भाषा आदि। इसी तरह किसी एक ही स्थान पर विभिन्न कार्य करने वालों की बोली को भी भाषा ही कहते हैं। जैसे सुनारों की भाषा, सटोरियों की भाषा, लोहारों की भाषा, अध्यापकों की भाषा, मोटर ड्राइवरों की भाषा, नाइयों की भाषा, रिक्शे तांगे वालों की भाषा आदि। कुछ कृत्रिम बोलियों को भी भाषा ही कहा जाता है। जैसे कुछ लड़के या लड़कियां आपस में अपने विचार व्यक्त करने के लिए कृत्रिम बोली का प्रयोग करते हैं। यदि उन्हें सिनेमा जाना है कहना है तो कहेंगे सिर्फ नेमा जरफाना है। क्या तुम भी चलोगे कहना है तो कहेंगे खिरफिया तुम मर फर भी चरफलोगे। ऐसे ही वे यदि मोहन जाता है कहना चाहेंगे तो कहेंगे जमूज हजन जजा जता जह। इसी प्रकार और भी कृत्रिम भाषाएं बनाई जाती हैं। डॉक्टर एल ज़मेनहॉफ ने भी 1887 में एक ऐसी कृत्रिम भाषा का निर्माण किया था जो एस्पिरेंटो कहलाती है और जो रचना की दृष्टि से अश्लिष्ट योगात्मक होती है। इसमें संबंध तत्व तो बिल्कुल स्पष्ट होते हैं। जैसे KAT कैट यानी बिल्ली, INN यानी स्त्रीलिंग का चिन्ह, ID ईड यानी बच्चे का चिन्ह, ET एट यानी छोटे का चिन्ह, ओ संज्ञा का चिन्ह। इनके योग से शब्द बनेंगे एक बिल्ली यानी कैट इन ओ, एक बिल्ली का बच्चा कैट इड ओ, और एक छोटी बिल्ली का बच्चा कैट इन एट इड ओ आदि। आजकल इस कृत्रिम भाषा का प्रचार यूरोप में अत्यधिक हो रहा है और वहाँ से लगभग 100 पत्रिकाएं इसी कृत्रिम भाषा में निकल रही हैं। अब इसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहने का भी प्रयत्न हो रहा है। इसी तरह भाषा शब्द विविध भाव अर्थों में व्यवहृत होता है। भाषा की परिभाषा। अब प्रश्न यह है कि भाषा का लक्षण क्या है, भाषा की परिभाषा क्या हो सकती है, अथवा भाषा किसे कहते हैं। भाषा का लक्षण भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों ने विविध ढंग से प्रस्तुत किया है। भाषा के सुप्रसिद्ध व्याकरण महर्षि पतंजलि ने अपने महाभाष्य में भाषा का विश्लेषण करते हुए लिखा है कि सिंगल इनवर्टेड कामा, जो वाणी वर्णों में व्यक्त होती है उसे भाषा कहते हैं। इनवर्टेड कामा बंद। सुप्रसिद्ध व्याकरण कामता प्रसाद गुरु लिखते हैं कि सिंगल इनवर्टेड कामा, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टतया समझ सकता है। इनवर्टेड कामा बंद। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने लिखा है कि सिंगल इनवर्टेड कामा, मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। भाषा तत्व रत्न नलिनी मोहन सान्याल का विचार है कि सिंगल यूनिटेड कामा अपने स्वर को विविध प्रकार से संयुक्त तथा विन्यस्त करने से उसके जो जो आकार होते हैं उनका संकेतों के सदृश व्यवहार कर अपनी चिंताओं को तथा मनोभावों को जिस साधन से हम प्रकाशित करते हैं उस साधन को भाषा कहते हैं। यूनिटेड कामा बंद। डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री ने लिखा है कि सिंगल यूनिटेड कामा, भाषा मनुष्यों की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने उच्चारणोपयोगी शरीरावयवों से उच्चारण किए गए वर्णनात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। इनवर्टेड कामा बंद। दुनी चंद्र का विचार है कि सिंगल इनवर्टेड कामा, हम अपने मन के भाव प्रकट करने के लिए जिन सांकेतिक ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उसे भाषा कहते हैं। इनवर्टेड कामा बंद। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना का विचार है कि सिंगल इनवर्टेड कामा, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समष्ट रूप में भाषा कहते हैं। इनवर्टेड कामा बंद। प्रोफेसर गुड़े ने लिखा है कि सिंगल इनवर्टेड कामा, भाषा हमारे विचारों एवं मनोभावों के उन चिन्हों का पूर्ण योग है जिनके द्वारा हम अपने बाह्य विचार प्रकट किया करते हैं और इच्छानुसार विचारों एवं भावों को एक बार प्रकट करके उनकी पुनरावृत्ति कर सकते हैं। इनवर्टेड कामा बंद। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का मत है कि सिंगल इनवर्टेड कामा, भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निःसृत व सार्थक ध्वनि समष्टि है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके। इनवर्टेड कामा बंद। आचार्य देवेंद्रनाथ का विचार है कि सिंगल इनवर्टेड कामा, उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की पूर्ण अभिव्यक्ति भाषा है अथवा जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय या सहयोग करते हैं उस यादृच्छिक रूढ़ ध्वनि संकेतों की प्रणाली को भाषा कहते हैं। इनवर्टेड कामा बंद। पाश्चात्य विद्वानों ने भी भाषा के विविध रूपों में व्याख्या की है। सुप्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक मैक्स मुलर ने भाषा की परिभाषा करते हुए लिखा है कि भाषा और कुछ नहीं है केवल मनुष्य की चतुर्बुद्धि द्वारा आविष्कृत एक ऐसा उपाय है जिसकी मदद से हम अपने विचार सरलता और तत्परता से दूसरों पर प्रकट कर सकते हैं और जो चाहते हैं कि इसकी व्याख्या प्रकृति की उपज के रूप में नहीं बल्कि मनुष्यकृत पदार्थ के रूप में करना उचित है। इटली के सुप्रसिद्ध साहित्य शास्त्री क्रोचे का मत है कि भाषा उस स्पष्ट सीमित तथा सुसंगठित ध्वनि को कहते हैं जो अभिव्यंजना के लिए नियुक्त की जाती है। ब्लॉक तथा ट्रेजर का कथन है कि भाषा उस व्यक्त ध्वनि चिन्हों की पद्धति को कहते हैं जिसके माध्यम से समाज समूह परस्पर व्यवहार करते हैं। सुप्रसिद्ध व्याकरण जस्पर्सन का विचार है कि भाषा का सार है मानवीय कार्यों के समझने में सहायता देना, अर्थात भाषा के माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे को समझने का कार्य करता है। सुप्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर जो वांद्रियाज का मत है कि भाषा की सबसे साधारण परिभाषा यह हो सकती है कि वह चिन्हों का एक वृत्त चक्र है। यहाँ चिन्ह से यहाँ पर अभिप्राय उन सब प्रकार के प्रतीकों से है जो मनुष्यों में संभाषण को संभव बना सके। हेनरी स्वीट का विचार है कि जिन व्यक्त ध्वनियों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति होती है उसे भाषा कहते हैं। ए एच गार्डिनर का कथन है कि विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिन व्यक्त एवं स्पष्ट ध्वनि संकेतों का व्यवहार किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। भाषा विज्ञान कोश में भाषा की परिभाषा इस प्रकार दी गई है कि मानवों के वर्ग विशेष में पारस्परिक व्यवहार के लिए प्रयुक्त उन व्यक्त ध्वनि संकेतों को भाषा कहते हैं जिनका अर्थ पूर्व निर्धारित एवं परंपरागत होता है तथा जिनका आदान प्रदान जीवा और कान के माध्यम से होता है। ऐसे ही ब्रिटेन के विश्वकोश में भाषा की परिभाषा इस प्रकार की गई है। भाषा व्यक्त ध्वनि चिन्हों की उस पद्धति को कहते हैं जिसके माध्यम से प्रत्येक समाज के दल एवं संस्कृति के मानने वाले सदस्य पारस्परिक विचार विनिमय किया करते हैं। इस प्रकार भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों की विभिन्न परिभाषाओं का सम्यक अनुशीलन करने पर निम्नलिखित तथ्य प्रकट होते हैं। पहला, भाषा में ध्वनि संकेतों का प्रयोग होता है। दूसरा, वे ध्वनि संकेत रूढ़ एवं परंपरागत होते हैं किंतु आवश्यकता अनुसार नए भी निर्मित होते रहते हैं। तीसरा, इन ध्वनि संकेतों से भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति होती है। चौथा, ये ध्वनि संकेत किसी समाज विशेष या वर्ण विशेष के आंतरिक एवं बाह्य कार्यों के संचालन एवं विचार विनिमय में सहायक होते हैं। पाँचवा, इन ध्वनि संकेतों के रूढ़िगत अर्थ होते हैं। छठा, प्रत्येक वर्ग एवं समाज के ध्वनि संकेत स्वनिर्मित होने के कारण दूसरे वर्ग या समाज के ध्वनि संकेतों से पृथक होते हैं। सातवां, इन ध्वनि संकेतों के माध्यम से ही एक व्यक्ति दूसरे के हृदयस्थ भावों एवं विचारों को समझता है तथा दूसरा पहले के विचारों एवं भावों से परिचित होता है। आठवां, इन ध्वनि संकेतों से केवल भाव एवं विचार एक बार प्रकट ही नहीं होते अपितु इनकी पुनरावृत्ति भी की जा सकती है। नौवां, ये ध्वनि संकेत उच्चारणोपयोगी अवयवों से वर्णों या शब्दों से व्यक्त होते हैं। और दसवां, ये ध्वनि संकेत सार्थक होते हैं जिनका वर्गीकरण एवं विश्लेषण एवं अध्ययन किया जाता है। अतः भाषा की सर्वमान परिभाषा यह हो सकती है कि सिंगल नोटेड कामा, भाषा मुख से उच्चरित उस परंपरागत सार्थक एवं व्यक्त ध्वनि संकेतों की समष्टि को कहते हैं जिसकी सहायता से मानव आपस में विचारों एवं भावों का आदान प्रदान करते हैं तथा जिसका वे स्वेच्छानुसार अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। भाषा के विविध रूप। जो ध्वनि संकेत मुख से निश्चित होते हैं उन सभी को प्रायः भाषा कहकर पुकारा जाता है, किंतु भाषा विज्ञान की दृष्टि से सभी ध्वनि संकेत भाषा नहीं कहलाते। उनके पृथक पृथक नाम दिए जाते हैं और उनका समाज में पृथक पृथक व्यवहार भी देखा जाता है। यही कारण है कि एक ही भाषा शब्द से इंगित ध्वनि संकेतों की समष्टि को भाषा वैज्ञानिकों ने विविध नाम दिए जो भाषा के विविध रूपों के द्योतक हैं। भाषा के ये विविध रूप इस प्रकार मिलते हैं। पहला, बोली। किसी सीमित क्षेत्र की उस उपभाषा को बोली कहते हैं जो उस क्षेत्र के निवासियों की स्वभावतः घरेलू बोलचाल की भाषा होती है। उच्चारण लगभग एक सा होता है जो केवल वक्ताओं के मुखों तक ही सीमित रहती है, जो तनिक भी साहित्यिक नहीं होती और जिसकी रूप रचना में स्थानीय भेद स्पष्ट विद्यमान रहता है क्योंकि वह अपनी समीपवर्ती बोली से भी भिन्न होती है। प्रायः किसी एक भाषा की कितनी ही बोलियां होती हैं, इसलिए बोली को किसी भाषा की इकाई कह सकते हैं। एक बोली अपने निकटस्थ बोली से स्पष्ट ही भिन्न सुनाई पड़ती है। जैसे हिंदी भाषा की ब्रज और खड़ी दोनों बोलियां पास पास बोली जाती हैं, परंतु दोनों में बड़ा अंतर हो जाता है। जैसे हिंदी के हे भाई तू कहाँ गया वाक्य को ब्रज बोली में अरे भैया तू कहाँ गयो कहेंगे और उसी की समीपवर्ती खड़ी बोली में ये भैये तू का गा कहेंगे। इसी प्रकार जो वंद्रीय यज ने ठीक ही कहा है कि निज उच्चारण व पदरचना के कारण बोली का अपना अस्तित्व होता है और वह वक्ता के मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों से स्वतंत्र होती है। भाषा विज्ञान कोश में भी किसी स्थान विशेष के निम्न वर्गीय अशिक्षित लोगों की बोलचाल में प्रयुक्त भाषा को बोली कहा गया है। यह बोली स्थानीय व्यक्तियों को पूर्णतया आयोजित रूप में प्राप्त होती है। वे साधारण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अथवा अपने वैयक्तिक गुणों की अभिव्यक्ति के लिए बोली का ही प्रयोग किया करते हैं। इसीलिए एक ब्रज प्रदेश का निवासी अपने घर में ब्रज बोली, अवध प्रदेश का रहने वाला अपने घर में अवधि, वाराणसी जनपद का रहने वाला अपने घर में भोजपुरी बोली तथा मेवात का रहने वाला अपने घर में मेवाती बोली का प्रयोग करता है। इन विविध बोलियों के तुलनात्मक अध्ययन से उन बोलने वाली जातियों के मनोविज्ञान का अनुशीलन बड़ी सरलता एवं सघनता से किया जा सकता है। दूसरा, विभाषा। जब कोई बोली धार्मिक श्रेष्ठता अथवा भौगोलिक विस्तार के कारण किसी प्रांत या उपप्रांत में प्रचलित हो जाती है तब उसे विभाषा या उपभाषा कहा जाता है। भाषा विज्ञान कोश में विभाषा को डायलेक्ट कहा गया है और उसकी परिभाषा करते हुए लिखा है कि किसी भाषा के उस विशिष्ट रूप को विभाषा कहते हैं जो किसी प्रदेश विशेष अथवा भौगोलिक क्षेत्र में बोली जाती है, जो अपने उच्चारण, व्याकरण संबंधी रूप और शब्द के प्रयोग की दृष्टि से अन्य परिनिष्ठित अथवा साहित्यिक भाषाओं से भिन्न होती है, परंतु इतनी भिन्न नहीं होती कि उसे किसी एक भाषा के अन्य विभाषाओं से बिल्कुल भिन्न माना जाए। साधारणतया भौगोलिक, राजनीतिक एवं ऐतिहासिक कारणों से किसी एक प्रदेश या उप प्रदेश में प्रयुक्त लोक व्यवहार की भाषा को विभाषा कहते हैं। इस दृष्टि से भारत में प्रचलित ब्रज, अवधि, बंगला, गुजराती, पंजाबी, मराठी, तमिल, मलयालम, कन्नड़, उड़िया आदि सभी विभाषाएं हैं। तीसरा, परिनिष्ठित भाषा। जब कोई विभाषा अपनी एक सुव्यवस्थित व्याकरण के साथ सभ्य एवं शिक्षित वर्ग के दैनिक व्यवहार एवं साहित्य रचना में प्रयुक्त होने लगती है तब उसे परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। इसे टकसाली भाषा भी कहा जाता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने लिखा है कि कई विभाषाओं में व्यवहृत होने वाली एक शिष्ट परिगृहित भाषा ही विभाषा ही भाषा राष्ट्रीय अथवा टकसाली भाषा कहलाती है। भाषा विज्ञान कोश में लिखा है कि किसी भाषा की उस विभाषा को परिनिष्ठित भाषा कहते हैं जो अन्य विभाषाओं पर अपने साहित्यिक एवं सांस्कृतिक श्रेष्ठता स्थापित कर लेती है और उन विभाषाओं के बोलने वाले भी उस भाषा को सर्वाधिक उपयुक्त समझने लगते हैं। यह एक बृहत्तर समुदाय के विचार विनिमय का साधन बन जाती है। इसका सर्वाधिक प्रयोग शिक्षा, साहित्य रचना, पत्र व्यवहार आदि में होने लगता है। इसका एक निश्चित व्याकरण होता है और इसको शिक्षित समाज में सर्वाधिक आदर प्रदान किया जाता है। हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, संस्कृत, जर्मनी, ग्रीक, रूसी आदि ऐसी ही परिनिष्ठित भाषाएं हैं। दैनिक समाचार पत्र, मासिक पत्र, पाठ्य पुस्तकों आदि की भी इसी भाषा का प्रयोग सर्वाधिक मात्रा में होता है और आंदोलनों, चुनाव प्रचारों, धार्मिक सम्मेलनों, साहित्यिक गोष्ठियों, राजनीतिक सभाओं, सामाजिक अधिवेशनों आदि के अवसर पर विविध प्रांतों एवं विविध प्रदेशों के शिक्षित एवं शिष्टजन इसी परिनिष्ठित भाषा में विचार विनिमय किया करते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी को ही ले सकते हैं। यह एक ऐसी परिनिष्ठित भाषा है कि भारत में प्रत्येक प्रांत के अंतर्गत अंतर्देशीय सम्मेलनों, राजनीतिक अधिवेशनों एवं विविध सभाओं में विचार विनिमय एवं भाषणों के लिए इसी का प्रयोग होता है। इसी में अधिकांश पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित होती हैं। इसी में दैनिक, पाक्षिक एवं मासिक समाचार पत्र अधिक संख्या में निकलते हैं और इसी में यह क्षमता है कि आज यह भाषा भारत की विविध विभाषा क्षेत्रों में राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता स्थापित कर रही है तथा शिक्षा, सैनिक वृत्ति, व्यापार, राष्ट्रीय चेतना, संचार साधन, यातायात आदि के लिए संपूर्ण भारत में प्रयुक्त हो रही है। चौथा, साहित्यिक भाषा, जो भाषा मुख्यतः साहित्य रचना के लिए व्यवहारित होती है उसे साहित्यिक भाषा कहते हैं। यह भाषा बोलचाल की भाषा से कुछ भिन्न होती है और परिनिश्चित भाषा के सन्निकट होती है। बोलचाल की भाषा में प्रायः अपरिष्कृत एवं असंस्कृत शब्दों का भी व्यवहार देखा जाता है, जबकि साहित्यिक भाषा पूर्णतया परिमार्जित, परिष्कृत एवं सुसंस्कृत होती है। कवि और लेखक अपनी अपनी रचनाओं में इसी भाषा का व्यवहार किया करते हैं। प्रायः साहित्यिक भाषा परिवर्तनशील होती है, क्योंकि समय के अनुसार उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी को ही ले सकते हैं। द्विवेदी युग से लेकर छायावादी युग तक अत्यंत शुद्ध, तत्सम शब्द प्रधान एवं परिष्कृत हिंदी भाषा का प्रयोग होता रहा। प्रगतिवादी युग में आकर इस साहित्यिक भाषा में परिवर्तन होने लगा और यत्र-तत्र लोक भाषा एवं उर्दू फारसी के शब्दों का भी समावेश होना आरंभ हो गया। प्रयोगवादी कवियों ने पुनः उसे शुद्ध संस्कृत निष्ठ बनाए रखने का प्रयास किया, परंतु नई कविता में आकर इस साहित्यिक भाषा हिंदी का कलेवर और भी अधिक विकृत हो गया। अब नई कविता की हिंदी भाषा उतनी परिनिष्ठित, परिमार्जित एवं परिष्कृत नहीं रही है जितनी की छायावादी युग की हिंदी भाषा दृष्टिगोचर होती है। अब उसमें उर्दू फारसी के ही नहीं अपितु अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग भी खुलेआम होता है। इस प्रकार साहित्यिक भाषा समयानुसार बदलती रहती है और इसका क्षेत्र किसी एक प्रदेश या भूखंड तक सीमित नहीं रहता। पांचवा, विशिष्ट भाषा। जो भाषा बोली, विभाषा एवं परिनिष्ठित भाषा से सर्वथा भिन्न, विविध व्यवसायों एवं अथवा कार्यों की शब्दावली में निर्मित होती है उसे विशिष्ट भाषा कहते हैं। जो वांद्रीयेज ने लिखा भी है कि विशिष्ट भाषा से तात्पर्य उस भाषा से है जिसका प्रयोग विशिष्ट परिस्थितियों में कुछ लोगों का समुदाय ही करता है, जैसे कानून की भाषा। अपने विशिष्ट प्रयोग के लिए वकील या जज जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो प्रचलित बोली से भिन्न कानूनी भाषा कहलाती है, जैसे दीवानी मुकदमा नंबर 6V/1969, अदालत जनाब तृतीय अपर जिला न्यायाधीश रायपुर, रूढ़ा भाई वल्द बालजी गुजराती मुद्दई बनाम ताराचंद अग्रवाल उम्र 26 साल आत्मा जयकरण दास अग्रवाल मार्फत श्री प्रेमचंद अग्रवाल 138 जवाहरगंज हापुड़ जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ ₹10,107.05 का मुकदमा दायर किया गया है। तो मैं इस सम्मंस के जरिए हुक्म देता है कि तुम अदालत में तारीख 26 फरवरी 1971 को दिन 11 बजे खुद या ऐसे वकील के मार्फत जिसे कि मुकदमे की बातें ठीक तौर से समझा दी गई हों और जो कि मुकदमे के बारे में कुल जरूरी सवालात का जवाब दे सके, या जिसके साथ कोई ऐसा आदमी मौजूद हो जो कि ऐसे सवालात का जवाब दे सके, कुल दस्तावेज पेश करो जिन पर कि तुम अपने बचाव की पुष्टि के लिए भरोसा रखना चाहते हो। ऐसी ही विशिष्ट भाषा पंडितों एवं पुरोहितों की होती है, क्योंकि वे सदैव वेद मंत्रों के माध्यम से आशीर्वाद देते हैं एवं देव मंदिरों में संस्कृत श्लोकों का या अन्य पद्यात्मक स्रोतों में प्रार्थना किया करते हैं। यही बात डॉक्टरों की विशिष्ट भाषा में देखी जाती है, क्योंकि वे भी अपनी पारिभाषिक शब्दों में ही मरीज या रोगी से बातें किया करते हैं, जैसे तुम्हारा टेम्परेचर कितना है, तुमने ब्लड टेस्ट कराया, तुम स्टूल टेस्ट भी करा लो और एक्सरे कराने से तुम्हारे मर्ज का ठीक ठीक पता चल जाएगा आदि। ऐसी कुछ विशिष्ट भाषा कॉलेज के विद्यार्थियों की भी होती है, क्योंकि वे सदैव मिश्रित भाषा में बातचीत किया करते हैं, जैसे आज तो टीचर के लेक्चर ने हमें बोर कर दिया, आज तो सारे पीरियड में पॉलिटिक्स ही डिस्कस होती रही आदि। उसी प्रकार शिल्पकारों, कारीगरों, चोर डाकुओं, सटोरियों, सर्राफों, रेल कर्मचारियों, डाक तार विभाग के कर्मचारियों, आदि की विशिष्ट भाषाएं होती हैं। इनको विशिष्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी भाषा लोक प्रचलित भाषा से सर्वथा भिन्न होती है और इसका प्रयोग सीमित समुदाय में होता है। कभी कभी यह भाषा गुप्त संपर्क का भी माध्यम होती है, परंतु इन सभी भाषाओं में एक बात समान रूप से देखी जाती है कि ये सभी भाषाएं किसी एक ही सामान्य भाषा का विशिष्ट रूप होती हैं और प्रयोक्ताओं की आवश्यकता के अनुकूल अपना रूप ग्रहण किया करती हैं। छठा, राज्य भाषा। जो भाषा किसी राज्य के सरकारी कार्यों में सर्वाधिक प्रयुक्त होती है उसे राज्य भाषा कहते हैं। राज्य भाषा में केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारें अपने पत्र व्यवहार किया करती हैं। सरकारी आदेश एवं आज्ञाएं भी इसी भाषा में मुद्रित होते हैं और केंद्र एवं प्रदेश के मध्य संपर्क स्थापित करने का कार्य भी इसी भाषा में होता है। राज्य भाषा सदैव देश में शासनात्मक ऐक्य की स्थापना में बड़ी सहायता पहुंचाती है। भारत में पहले संस्कृत राज्य भाषा रही, फिर आवीरों की सत्ता राजसत्ता स्थापित होने पर प्राकृत एवं अपभ्रंश भाषाएं राजभाषा हो गई। फिर मुसलमानों के शासनकाल में फारसी को राजभाषा का गौरव प्राप्त हुआ। फिर अंग्रेजों की सत्ता स्थापित होते ही अंग्रेजी ने यहाँ पर राजभाषा का स्थान ग्रहण किया और भारत के स्वतंत्र होते ही हिंदी को राज्यभाषा घोषित किया गया। आज भारत का अधिकांश राज्य कार्य हिंदी के माध्यम से होता है। भारत एक विशाल राष्ट्र है, यहाँ अनेक प्रदेश हैं और सभी प्रदेशों की भाषाएं पर्याप्त समृद्ध एवं विकसित हैं। परंतु सभी प्रदेशों के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए केंद्र ने हिंदी को ही राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है, क्योंकि हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसे भारत के 60% निवासी बोलते एवं अच्छी तरह समझते हैं। सातवां, राष्ट्रभाषा। जो भाषा किसी राष्ट्र के भिन्न भिन्न भाषा भाषियों के परिस्थिति विचार विनिमय का साधन बनी हुई है उसी समूचे राष्ट्र को भावात्मक एकता के सूत्र में बांधती है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। वैसे किसी भी राष्ट्र में प्रचलित सभी भाषाएं राष्ट्रीय भाषाएं होती हैं, परंतु प्रत्येक समृद्धशाली राष्ट्र की कोई एक भाषा ही राष्ट्रभाषा के नाम अभिहित की जाती है, क्योंकि वह भाषा उस राष्ट्र की प्रतीक होती है। उसी को विदेशी राष्ट्रों में सम्मान दिया जाता है, उसी में सारे राष्ट्र की अंतरात्मा विद्यमान रहती है और उसी को उस राष्ट्र के नाम से अन्य देशों में जाना जाता है। उदाहरण के लिए भारत में बंगला, मराठी, गुजराती, पंजाबी, राजस्थानी, बिहारी, उड़िया, तमिल, कन्नड़, मलयालम आदि अनेक समृद्ध एवं उन्नत भाषाएँ प्रचलित हैं, परंतु भारत के राष्ट्रीय नेताओं ने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के महत्वपूर्ण पद पर आसीन किया और संविधान में इसकी घोषणा करके हिंदी को संपूर्ण भारत राष्ट्र की प्रतिनिधि एवं प्रतीक भाषा के रूप में अंगीकार किया। आज ये हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा के गौरवमय पद को ग्रहण करके बंगला, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि सभी भाषाओं के क्षेत्रों में विचार विनिमय का साधन बनी हुई है। समूचे राष्ट्र को भावात्मक एकता के सूत्र में बांध रही है और सभी स्थानों पर पारस्परिक संपर्क स्थापित करने में भी सहायता प्रदान कर रही है। आज राजनीतिक अधिवेशनों, धार्मिक सम्मेलनों, साहित्यिक गोष्ठियों एवं सामाजिक समारोहों में इसी राष्ट्रभाषा हिंदी को विचारों के प्रकट करने के लिए अपनाया जाता है। भारत के अन्य भाषा भाषी भी इसी भाषा में सुगमता से विचारों का आदान प्रदान करते हैं और अधिकांश पत्र पत्रिकाओं, सामाजिक विज्ञापनों, चलचित्रों आदि में सर्वाधिक इसी भाषा का प्रयोग हो रहा है। अतः हिंदी आज भारत राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर रही है। विदेशों में हमारे राजदूत भी इसी राष्ट्रभाषा में अपने प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं और विदेशी राष्ट्र भी इसी भाषा को स्वतंत्र राष्ट्रभाषा की प्रतीक भाषा मानते हैं। आठवां, अंतर्राष्ट्रीय भाषा। जो भाषा विभिन्न राष्ट्रों के बीच विचार विनिमय, पत्र व्यवहार आदि का माध्यम होती है वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। इस भाषा का प्रयोग प्रायः अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में होता है, क्योंकि जहाँ विविध राष्ट्रों के विभिन्न भाषा भाषी प्रतिनिधि एकत्र होते हैं वहाँ पारस्परिक विचार विनिमय के लिए किसी एक ऐसी परिनिश्चित भाषा का प्रयोग किया जाता है जो अधिकांश राष्ट्रों में प्रचलित होती है और जिसे विश्व के अधिकांश राष्ट्रों के प्रतिनिधि अपना लेते हैं। जैसे आजकल अंग्रेजी भाषा एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में विख्यात है, क्योंकि विश्व के अधिकांश राष्ट्रों की एकमात्र संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ में इसी भाषा के माध्यम से सर्वाधिक विचार विनिमय होता है और इसी भाषा का जानना अब प्रत्येक राष्ट्र के राजदूत के लिए अपेक्षित होता है। अधिकांश राजनयिक संबंधों की स्थापना के लिए भी इसी अंग्रेजी भाषा का व्यवहार होता है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार इसी भाषा में प्रसारित किए जाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार व्यवस्था अथवा टेलीप्रिंटर आदि में भी इसी भाषा का प्रयोग सर्वाधिक होता है। सारांश यह है कि पहले भाषा बोली के रूप में केवल बोलचाल में ही प्रयुक्त होती है, फिर जब वह अधिकांश व्यक्तियों द्वारा व्यवहृत होने लगती है और उसका क्षेत्र भी किसी उपप्रांत या प्रांत तक विस्तृत हो जाता है, तब वह विभाषा कहलाने लगती है। तत्पश्चात व्याकरणों के नियमों से सुव्यवस्थित होकर तथा शिष्ट एवं शिक्षित जनों द्वारा अपना लिए जाने पर वही विभाषा परिनिष्ठित भाषा बन जाती है और साहित्यकारों के द्वारा साहित्य रचना में अधिक व्यवहारित होने पर वह साहित्यिक भाषा कहलाने लगती है। इतना ही नहीं, जब कोई भाषा विशिष्ट वर्ग के कारीगरों, शिल्पियों, व्यवसायियों, विद्यार्थियों, कार्यकर्ताओं आदि के द्वारा प्रयुक्त होने लगती है, तब उसे विशिष्ट भाषा कहा जाता है। जब कोई भाषा राजकाज में सर्वाधिक प्रयुक्त होने लगती है, तब वह राजभाषा बन जाती है और जब कोई परिनिष्ठित एवं समृद्ध भाषा किसी एक राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने लगती है, तब वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। परंतु जब कोई समृद्ध भाषा विविध राष्ट्रों के विचार विनिमय का साधन बनाती हुई अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर लेती है, तब उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं।